गाथा में आप सुन रहे हैं ब्रेम स्टोकर की लिखी कहानी हनीमून। दुनिया के सबसे डरावने माने जाने वाले उपन्यास ड्रैकुला के लेखक ब्रेम स्टोकर ने तमाम शानदार कहानियां भी लिखी हैं। ऐसे ही उनकी लिखी बहुत दिलचस्प कहानी है हनीमून। इसे उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। हमारी शादी हुए कुछ अरसा हो चुका था और अब हम हनीमून के लिए किसी खूबसूरत जगह का चुनाव करने की कोशिश में लगे हुए थे। हनीमून मनाने के लिए मेरी बीवी ने नरनबर्ग इलाके को चुना, ताकि शहरों की हंगामे भरी जिंदगी से दूर फुर्सत के साथ कुछ वक्त गुजारे जा सके। बदकिस्मती से रास्ते में हमें एक दोस्त मिल गया जो जबरदस्ती हमारे साथ इस टूर में शामिल हो गया था। जाहिर सी बात है कि हनीमून में किसी तीसरे की मौजूदगी हमारे लिए बर्दाश्त करने से बाहर थी, लेकिन हम सीधे तौर पर उसे मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमारा काफी प्यारा दोस्त था। हमें कबाब में हड्डी मजबूरी में शामिल करना पड़ा था, लेकिन हनीमून से लौटने के बाद मेरी बीवी अमेलिया ने अपनी तमाम सहेलियों को नसीहत दे दी थी कि वो हनीमून पर जाते वक्त किसी तीसरे को शामिल ना करें, वरना पछताना पड़ सकता है। मैं, मेरी बीवी और मिस्टर एलिस नरनबर्ग के तमाम इलाके की सैर करने के बाद नरनबर्ग के किले को देखना चाहते थे, जो एक बहुत बड़ी और ऊंची चट्टान पर बनाया गया था। इस ऐतिहासिक किले के साथ एक राजा के जुल्म सितम की दास्तानें जुड़ी हुई थी। इतिहास में दर्ज है कि 18वीं शताब्दी में एक जालिम राजा ने बाहरी मुल्कों से बचाव और रियासत के बागियों को सजा देने के लिए इस किले का निर्माण कराया था। अब यह पुरातात्विक धरोहर बन चुका था और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते थे। किले के चारों तरफ गहरी खाई थी, जो देखभाल की कमी की वजह से जंगली घास से अटी पड़ी थी। किले की बाहरी दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये दीवारें काफी ऊंची और चौड़ी थी, साथ ही थोड़ी सी ढलान लिए हुए थी। हम तीनों ही दीवार पर बैठे बातें कर रहे थे और कुदरती नजारों का लुत्फ ले रहे थे। तभी हमारी नजर खाई में एक बिल्ली पर पड़ी। वो अपने बच्चे के साथ प्यार से खेल रही थी। दरअसल बिल्ली की प्यार भरी गुर्राहट की वजह से ही हमारी नजर उधर उठ गई थी। बिल्ली कभी अपने बच्चे को मुंह से ढकेल देती तो कभी उसे चाटने लगती। हम बहुत गौर से इस खेल को देख रहे थे और वो दोनों दुनिया भर से बेखबर अपने खेल में खोए हुए थे। तभी एलिस ने अचानक ही एक पत्थर को उठाते हुए कहा, मैं बिल्ली और उसके बच्चे के बीच के इस खेल को और मजेदार बनाने वाला हूं। तुम करना क्या चाहते हो? एमिलिया ने उसे रोकते हुए पूछा। मैं ये पत्थर नीचे फेंकने जा रहा हूं। जब ये पत्थर उन दोनों के बीच से गुजरेगा तो वो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये पत्थर कहां से आया। नहीं मिस्टर एलिस, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एमिलिया ने उसे मना करते हुए कहा। ये पत्थर बिल्ली के बच्चे को भी लग सकता है।
नहीं, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूं कि ये पत्थर उस मासूम बच्चे पर गिरा दूं?
भरोसा रखो, मैं अपने निशाने का बहुत पक्का हूं। मैं इस पत्थर को इस तरीके से फेंकूंगा कि वो बिल्ली और उसके बच्चे के दरमियान से गुजरेगा, फिर दोनों ही चौंक जाएंगे। तुम देखना, बहुत मजा आएगा।
एमिलिया कुछ और कहना चाहती ही थी कि एलिस ने पत्थर को तेजी से नीचे की तरफ लुढ़का दिया। यकीनन एलिस का निशाना बिल्कुल सही था, लेकिन बिल्ली के बच्चे की किस्मत सही नहीं थी। वो अचानक ही पत्थर के सामने आ गया। एक दर्दनाक चीख उभरी और हवा में विलीन हो गई। पत्थर बिल्ली के बच्चे के सर पर लगा था और उससे खून बहने लगा था। काली बिल्ली ने मुंह ऊपर उठाकर नफरत और खूंखार नजरों से एलिस की तरफ देखा और बच्चे का जख्म चाटने लगी। उसने अपने बच्चे को मुंह से ढकेल कर उठाने की भी कोशिश की। जब बच्चे में कोई जुम्बिश नहीं हुई तो वो उसे सूंघने लगी। उसे यकीन हो चला था कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद वो बहुत दर्दनाक आवाज में बिल्कुल इंसानों की मानिंद रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर हम सभी के दिल दहल गए थे। कुछ देर बाद उसने नजर उठाकर हमारी तरफ देखा। वो खूब जानती थी कि उसके बच्चे का कातिल एलिस ही है। इंतकाम के जोश में वो पंजों के बल खड़ी हो गई और छलांग लगाकर दीवार चढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। दीवार काफी ऊंची थी, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकी। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दूर से दौड़ कर आती और दीवार पर कदम जमाते हुए कुछ दूर चढ़ जाती और फिर वापस गिर जाती। एक बार तो वो अपने मुर्दा बच्चे की लाश पर भी गिर गई। हर नाकामी के बाद भी उसका हौसला पस्त नहीं हुआ था और इस वक्त उसकी आंखें खूंखार हो रही थीं। उसका पस चलता तो वो एलिस को कच्चा चबा जाती। अफसोस, ये नन्हा शेर दीवार फांद कर कभी हम तक नहीं पहुंच सकता। एलिस ने बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए एमेलिया से कहा। एमेलिया और हम इस हादसे से गमगीन थे। प्यारी बिल्ली, मैंने जानबूझकर तुम्हारे बच्चे को कत्ल नहीं किया है, ये सिर्फ एक हादसा था। मुझे माफ कर दो प्यारी दोस्त, एलिस ने बिल्ली से माफी मांगते हुए एमेलिया से कहा। मुझे इसके लिए अफसोस है, लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, ये महज एक हादसा है। कुछ देर बाद हम वहां से चल दिए। अब हम बाकी किला देखना चाहते थे। हम दीवार पर चल रहे थे और बिल्ली नीचे हमारा पीछा कर रही थी। जब हम काफी दूर निकल आए तो बिल्ली हमारी आंखों से ओझल हो गई। हमने समझा कि बिल्ली चली गई है, लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि वो फिर हमारे पीछे पीछे आ रही है। उसने अपना मुर्दा बच्चा मुंह में उठा रखा था। उसके पीछा करने से हम थोड़ा खौफजदा हो गए। अमेलिया ने एलिस से कहा, तुम्हें होशियार रहना चाहिए, ये जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसके इरादे नेक नहीं मालूम होते हैं। आई एम सॉरी अमेलिया, इंसान को इतना बुजदिल नहीं होना चाहिए, और फिर मुझ जैसा कर्नल एक बिल्ली से डर जाए। एलिस ने कहकहा लगाते हुए कहा, गुड बाय जंगली बिल्ली, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। ये कहते हुए एलिस सीढ़ियां उतरने लगा और हम भी उसके पीछे पीछे दीवार से सीढ़ियों के सहारे उतरने लगे। अब हमारे और उस जंगली बिल्ली के बीच मोटी और ऊंची दीवार आ गई थी। जाहिर है कि हम दोनों एक दूसरे की नजरों से दूर जा चुके थे। हमने किले की खूब सैर की, उसका हर हिस्सा छान मारा। शाही कमरे, शाही बाग और दूसरी तमाम अजीबोगरीब चीजें देखने के बाद हमने फैसला किया कि हम उस खूनी बुर्ज को अंदर से देखेंगे, जिसमें दुश्मनों को खौफनाक सजाएं दी जाती थी। बुर्ज में जाना निषेध था, लेकिन हमारा गाइड पैसों के लालच में आ गया और उसने अंदर जाने का इंतजाम कर दिया। बुर्ज के अंदर रोशनी काफी कम थी। बुर्ज में जाने का यही एक रास्ता था और दरवाजा खुला होने की वजह से अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इस रोशनी में हमें कुछ चीजें नजर आ रही थी। गाइड हमें तमाम तरह के पुराने जमाने के हथियार और सजाओं के तरीके के बारे में बता समझा रहा था। उसने हमें एक लोहे का कड़ा दिखाया, जिसमें दुश्मनों को उल्टा कर लटका कर फांसी दी जाती थी। उसने लोहे का एक तख्त हमें दिखाया। गाइड ने बताया कि इसमें दुश्मन को पीस दिया जाता था। वो कैसे? एलिस ने हैरानी से पूछा। ये जो नीचे लोहे का तख्ता नजर आ रहा है, उस पर दुश्मन को लिटा दिया जाता था। वो भाग न सके इसके लिए उसके हाथ और पैर को 4 जंजीरों से बांध दिया जाता था। नीचे के तख्ते के ठीक ऊपर लोहे का एक और भारी तख्ता लटक रहा है, वो एक मोटे रस्से से बंधा हुआ है। एक जल्लाद दूर खड़ा रस्से को धीरे धीरे नीचे लाता था और फिर कुछ फिट की ऊंचाई से उसे दुश्मन पर छोड़ देता था। दुश्मन दोनों पाटों के बीच पिस जाता था। क्या मैं इस पर लेट सकता हूँ? एलिस ने एमेलिया की तरफ देखते हुए गाइड से पूछा। दरअसल वो मेरी बीवी एमेलिया पर अपनी बहादुरी का रौब जमाना चाहता था। एमेलिया गाइड के जवाब देने से पहले ही बोल पड़ी, नहीं एलिस प्लीज, ये बहुत खतरनाक है।
इसमें खतरे वाली कौन सी बात है?
एलिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं फौजी कर्नल हूँ और कई बार इससे ज्यादा खतरनाक हालात से गुजर चुका हूँ। ये देखते हुए कि एलिस इस तजुर्बे के लिए तैयार हो चुका है, मैंने उससे कहा,
चलो जल्दी करो और तख्ते पर लेट जाओ।
एलिस ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश करने लगा। लोहे के तख्त पर लेटने के बाद उसने गाइड से कहा, मेरे दोनों हाथ पैर उस जंजीर से जकड़ भी दो, तुम उस रस्से को भी खोल दो और ऊपर वाले लोहे के तख्ते को धीरे धीरे मेरे नजदीक लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मौत को अपने नजदीक पाकर कैसा महसूस होता है। एमेलिया खौफ ज़दा हो रही थी और एलिस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गाइड ऊपर वाले तख्ते को नीचे लाने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी रजामंदी और पैसों के लालच ने आखिरकार उसे इस बात के लिए राजी कर ही लिया। उसने एलिस को जंजीर से जकड़ दिया और रस्सा मजबूती से पकड़कर उसे धीरे धीरे नीचे लाने लगा। वो काफी सतर्क था और रस्से को बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला रहा था। गाइड का चेहरा खौफ से कपकपा रहा था। ये बहुत मुश्किल और खतरनाक काम था। हम तीनों ही दरवाजे के करीब खड़े थे। कृत्रिम मौत को अपने नजदीक आते देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। जब ऊपर वाला तख्ता 3 फीट दूर रह जाए तो एमेलिया से कहना कि वो आकर मेरी जंजीरें खोल दे। एमेलिया की जगह मैंने जवाब दिया, फिक्र मत करो एलिस, मैं यहां हूं, जब तुम्हें डर लगने लगे तो मुझे बता देना। ज्यों ज्यों तख्ता एलिस की तरफ बढ़ रहा था, एमेलिया का चेहरा खौफ और घबराहट की वजह से सफेद होता जा रहा था। मैंने देखा कि एमेलिया पीछे मुड़कर कुछ देख रही है। मैं भी पलटकर पीछे देखने लगा। बिल्ली, वही काली बिल्ली, वही काली जंगली बिल्ली। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन अपने आप पर काबू पाते हुए मैंने एलिस की तरफ देखा। उसने भी निगाह टेढ़ी करके बिल्ली को देख लिया था, लेकिन अब भी वो बेफिक्र नजर आ रहा था और एमेलिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बिल्ली किसी खूनी दैत्य के रूप में खड़ी थी, लेकिन वो एलिस तक नहीं पहुंच सकती थी। हम तीनों ही दरवाजे पर खड़े थे। मैंने एमेलिया की तरफ देखा। वो काफी डरी हुई लग रही थी और उसके लिए अब खड़ा रहना मुश्किल था। मैं उसे संभालने के लिए उसकी तरफ लपका और उसे बाहों से पकड़कर बैठा दिया। ऐन उसी वक्त बिल्ली ने छलांग लगाई, लेकिन एलिस की तरफ नहीं बल्कि गाइड की तरफ। इस अचानक हमले से गाइड खुद को संभाल नहीं सका और मुंह के बल गिर पड़ा और उसके हाथ से रस्सा छूट गया। मैंने रस्से को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वक्त गुजर चुका था। एक जोरदार धमाका हुआ और एलिस की दर्दनाक चीख उसी में डूब कर रह गई। तख्ते के आसपास की जमीन खून से तर हो गई। एलिस खत्म हो चुका था। एमेलिया खौफ से बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे उठाकर बुर्ज से बाहर लाकर लिटा दिया। गाइड बैठा रो रहा था। जब मैं वापस अंदर पहुंचा तो देखा कि काली बिल्ली विजेता जैसी मुद्रा में लोहे के तख्ते पर शान से बैठी हुई थी, जिसके नीचे एलिस का रेजा रेजा शरीर पड़ा हुआ था। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने दीवार पर टंगी एक पुरानी तलवार उठाई और बिल्ली को दो हिस्सों में बांट दिया। गाथा में आप सुन रहे थे ब्रेम स्टोकर की लिखी कहानी हनीमून। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।